के गीतामृत बुधवार के कार्यक्रम में योग में स्थित होकर कर्म की परिभाषा भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को सुनाई। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये है योग की परिभाषा, जहां पर समता भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि चाहे तुम्हारी विजय हो या पराजय, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान इन सब में सम रहना, इसे कहते हैं योग। तो अर्जुन मानो इसके पश्चात प्रश्न पूछे कि तो जो भी मैं कर्म करूं वो क्या योग में स्थित होने के वजह से कोई परिणाम उसका मुझे नहीं मिलेगा। अर्थात अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि क्या योग में स्थित कर्म कौन सी श्रेणी में आते हैं, पाप में पुण्य में या इन दोनों के परे। तो आज का श्लोक उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भक्ति योग के द्वारा गर्हित कर्म से अपने आप को दूर रखो हे धनंजय, और उसी भावना में मेरी शरण आओ, जो कृपण होते हैं, जो फल की इच्छा रखते हैं वो कृपण होते हैं। ये इस श्लोक का अनुवाद है और आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे कि पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है। सकाम कर्म की तुच्छता भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं और उसके विपरीत बुद्धि योग की उदारता। फिर आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को धनंजय इस नाम से पुकारा और कृपण शब्द के 6 अर्थ हमारे आचार्य क्या बताते हैं। तो पिछले श्लोक से संबंध, पिछले श्लोक में योग में स्थित कर्म की परिभाषा अर्जुन को भगवान ने सुनाई। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो अर्जुन का जो प्रश्न हमने लिया उसके उत्तर में भगवान कहते हैं पाप एवं पुण्य इन दोनों से परे जो कर्म होता है वो है योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित जो कर्म करते हैं वो पाप और पुण्य इन दोनों के परे कर्म करते हैं। तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि गर्हित कर्म और सकाम कर्म, जिन्हें पाप और पुण्य यदि हम कहें तो पाप और पुण्य के परे भगवान कह रहे हैं अपनी बुद्धि से या बुद्धि योग में स्थित, जब वो योगी बुद्धि योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, इसलिए शरणम अन्विच्छ भगवान ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जाकर केवल योग में स्थित होकर कर्म करना ही आवश्यक नहीं है, भगवान कह रहे हैं उस भावना में शरणागत भी होना भगवान को। तो शरणागत होने के पश्चात फिर सकाम कर्म चाहे उसके द्वारा हुए हो या गर्हित कर्म उसके द्वारा हुए हो, वो दोनों के परे अब अपने आप को स्थित करता है। तो सकाम कर्म की तुच्छता क्या है, हम देखें तो हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में बताया गया है उदाहरणों के साथ कि जब व्यक्ति केवल इन दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, सुख और सुरक्षा। साधारणतः इस भौतिक संसार में बद्ध जीव ये दो वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी कर्म करता है। उस कर्म में मुझे कितना सुख प्राप्त होगा और सुरक्षा, जो सुख मुझे प्राप्त हो चुका है उसकी सुरक्षा कैसे होगी, है कि नहीं? सुख और सुरक्षा। तो सकाम कर्म का अर्थ है कामनाओं के साथ किया गया कर्म। हरे कृष्णा, थोड़ा साउंड ठीक नहीं आ रहा। सकाम कर्म का अर्थ है कामनाओं के साथ किया गया कर्म, और निष्काम का अर्थ है बिना किसी भौतिक कामना के किया गया कर्म। तो सुख और सुरक्षा के दो उदाहरण यदि हम भागवत से लें, राजा नृग और राजा नहुष। तो ये कथा हमने पहले भी सुनाई। राजा नृग बहुत बड़े दानवीर राजा थे और उन्होंने गौदान की इसी ब्राह्मण को, और एक गाय जो उन्होंने दान, बहुत सी जो गाय दान की थी उनमें से एक गाय वापस उनकी गौशाला में आ गई, और फिर गलती से वो गाय जो वापस आ गई थी दान दी हुई, वो किसी और ब्राह्मण को उन्होंने गलती से दान में दे दी, और फिर उन्हें ये दो ब्राह्मणों के द्वारा शाप मिला, और शाप ये मिला कि वो छिपकली बन जाए। तो अब उन्होंने एक सकाम कर्म किया था, इसके अंदर कामना क्या थी उनकी? कामना यह थी कि गोदान के द्वारा कैसे वो पुण्य कमाए, और पुण्य कमाकर कैसे अपना जीवन सुख और सुरक्षित बनाए। लेकिन एक गलती के वजह से, और वो भी अनजाने में हुई गलती, वो जानबूझ के गलती नहीं की थी, अनजाने में हुई गलती के वजह से सोचिए कहां स्वर्गलोक का निवास की अपेक्षा वो रखे थे, और यहां पर एक अंधे कुएं में छिपकली बन के बैठे। तो कितना उसमें, यदि एट द एंड पूछें कि कितना सुख मिला महाराज नृग को, छिपकली का जीवन कितना, कोई अगर उसका रेटिंग निकाले कि संसार में छिपकली के जीवन को कितना सुख मिलता है। हाँ ठीक है, कोई दूसरा भी जानवर हुआ होता तो कम से कम कोई अमेरिका में कुत्ता, तो उसको भी बहुत सुख समृद्धि मिल जाती है। छिपकली को सब दूर करते हैं, एक गर्हित योनि समझते हैं। और महाराज नहुष ये अपने शक्ति के बल से इन्होंने देवराज इंद्र को उनके पद से निकाल दिया, और देवराज इंद्र का पद इन्होंने ले लिया, ये महाराज नहुष ने। लेकिन केवल कुछ समय के लिए वो पद उन्हें प्राप्त हुआ। हालांकि उनके, उन्होंने जो सकाम कर्म किए थे उसके अनुसार उसकी अवधि काफी थी, एक्सपायरी डेट बहुत आगे था, लेकिन गलती बीच में इनसे भी हुई। गलती ये हुई कि अहंकारवश बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पालकी पर लगाए इनको उठाने के लिए। अगस्त मुनि जैसे ऋषि, इनको वो होते ना पालकी के चार लोग कंधा दे रहे हैं, तो ये अगस्त मुनि को बोल, और वो भी देखिए किस हद तक ये जा रहे थे, ये कहे कि मैं इंद्र के पद पर हूं तो इंद्र की जो पत्नी मेरी, देखो यहां पर कहां तक वो, और पालकी में बैठकर जा रहे हैं इंद्र की पत्नी की ओर, और अगस्त मुनि उठा रहे हैं, और अगस्त मुनि को ये बोलते हैं सर्प सर्प, संस्कृत में उसका अर्थ है जल्दी जल्दी चलो, क्या इतना धीरे धीरे चल रहे। तो फिर अगस्त मुनि ने सोचा कि ठीक है भाई, आपका तो एक्सपायरी डेट आ गया, तो सर्प सर्प तो सर्प बन जाओ फिर, तो सर्प बन गए। तो ये महाराज नृग छिपकली और महाराज नहुष सर्प। तो जो इन्होंने इनपुट डाला था सकाम कर्म का, एक गलती के वजह से अब आउटपुट क्या निकला, हजारों वर्षों तक उस योनि में पड़े रहो। हिरण्यकशिपु, एक और उदाहरण, हिरण्यकशिपु ने हमारे मानवीय वर्षों की गणना यदि हम करें तो 36,000 साल तपस्या की थी, 36,000 ईयर्स, 100 स्वर्गीय वर्ष हमारे 36,000 साल हिरण्यकशिपु। और कैसी तपस्या, ये अपने टोज के ऊपर खड़ा रहना, पैरों का जो अंगूठा है उसके ऊपर, पैरों के ऊपर नहीं अंगूठे के ऊपर खड़ा रहना, और दोनों हाथ ऊपर निर्जल बिना कुछ खाए सोए 36,000 ईयर्स। और राज्य उन्हें कितने साल करने मिला 36,000 ईयर्स के बाद, और नरसिंह देव प्रकट हुए 5 साल का अंतराल था बस। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद जो इतने अलग अलग उन्होंने वर मांग लिए ब्रह्मा जी से, तो कम से कम उसका डबल तो जीने की उनकी इच्छा थी ना। 5 साल, 5 साल केवल, और वो भी 5 वर्षीय उनके बालक का अपराध उन्होंने किया प्रहलाद का, उसके वजह। तो यहां पर भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि लगाओ, ये जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं, यहां पर चले गए, ये तीर्थयाटन कर लिया, ये यज्ञ, ये होम, ये पूजा, ये हवन, और उनको लगता है ये सब, भगवान पिछले युगों की बात बता रहे हैं, कलयुग में तो खैर किसी को पता ही नहीं है कि वो सकाम कर्म भी कैसे ठीक से किया जाता। तो सकाम कर्म भी कोई ठीक से करता है, अंततः उसका जो परिणाम है वो तुच्छ, इसलिए तुच्छता बताई गई है सकाम कर्म, कि इतना बृहद कर्म करना पड़ता है और इतने बृहद कर्म का जो फल मिलता है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्षुल्ल सुख, बहुत ही नगण्य उसकी मात्रा होती है उस सुख की, उस परिणाम की। तो अर्जुन को भगवान सकाम कर्म की तुच्छता इस प्रकार से बता रहे हैं, और फिर कहते हैं दूरेण यवरम कर्मा, भक्ति के द्वारा तुम केवल सकाम कर्मों से न बचो बल्कि गर्हित कर्मों से भी बचो, या उल्टा यदि हम समझें कि केवल गर्हित कर्मों से न बचो बल्कि सकाम कर्मों से भी बचो, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, भगवान यहां पर यह बता रहे हैं। तो यहां केवल अर्जुन को ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम पाप मत करो और पुण्य से भी ऊपर उठो, भगवान ने कहा है बुद्धि योगा बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग, कि भक्ति योग के सहारे तुम इन दोनों के ऊपर उठो। तो यह भगवान बताना चाह रहे हैं कि बिना भक्ति योग के सहारे कोई भी गर्हित पाप और पुण्य ये दोनों के ऊपर नहीं उठ सकता, कदापि नहीं उठ सकता, जब तक कि वो भक्ति योग में स्थित नहीं होता। तो हम यदि मुख्य गर्हित कर्म लें और उसके विपरीत जो भक्ति के कर्म हैं जो हमारे शास्त्र में बताए गए, जैसे कि गर्हित कर्मों में बताया गया है मांसाहार, नशापान, जुआ, परस्त्री पुरुष गमन, ये मुख्य कैटेगरी है। ये नहीं समझना कि ठीक है मैं अगर मेरे इसमें कोई लिस्ट में नहीं है ये सब तो मैं किसी गर्हित कर्म में नहीं लगा हूं। कलयुग में यह बताया गया है कि हम इनडायरेक्टली भी बहुत से गर्हित कर्मों में लगे रहते हैं, कि हम ऐसा जीवन अपना बना लिए हैं इस कलयुग में, या जो आज का आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज ने हमें एक ऐसा जीवन, एक ऐसी जीवन शैली लाकर दी है कि गर्हित कर्म से हम अनभिज्ञ रह ही नहीं सकते। ये न के न प्रकार हम इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमारे एक सन्यासी दे रहे थे कि मान लीजिए आपने कोई घरेलू सामग्री खरीदी, एक रबर बैंड खरीदा। क्या होता, इससे सिंपल क्या हो सकता, रबर बैंड। अब वो रबर बैंड कहां बना है, कौन से देश में बना है, किन कारणों के वजह से बना है, कितने रबर के ट्रीज तोड़े गए उसको बनाने के लिए, हमें नहीं पता, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई भक्ति योग में नहीं लग रहा है तो इनडायरेक्टली कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑप्रेस्ड लेबरर्स को लगाया गया वो रबर बैंड बनाने में, तो वो जो उनके ऊपर अत्याचार किसी भी प्रकार से हो रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी उसका अंश मात्र कर्म लगता है। इसलिए एक आजकल मनुष्य समाज के विषय में कहा गया है, ह्यूमन बीइंग्स दे आर अ वेरी क्रेजी स्पीशीज। व्हाई? दे डिस्ट्रॉय सो मेनी ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर पेपर बाय डिस्ट्रॉइंग दोज ट्रीज एंड देन ऑन दैट सेम पेपर दे प्रिंट सेव ट्रीज। तो इसलिए यहां पर ये चार जो बताए गए हैं, भक्ति कर्म जब कोई व्यक्तिगत रूप से भी इसका पालन करता है तो सामूहिक या सामाजिक रूप से कम अपने आप को उस गर्हित कर्म के परे। जैसे कि मांसाहार, यदि कोई कृपा अपने जीवन में इस गुण को कल्टीवेट करे, दया या कृपा क्षमा, तो अपने आप उसे मांसाहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी या इच्छा भी नहीं होगी, प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए इस भौतिक संसार में बहुत से हैं जो मांसाहार नहीं कर रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि वो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो यह समझना आवश्यक है कि धर्म या भक्ति के कर्म तभी वो व्यक्ति पालन करेगा जब ये चार सही मायने में पालन कर रहा है। अब देखो, कई पाश्चात्य देश में और भारत में भी मांसाहार नहीं कर रहे क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, अब समझ में आ रहा है, मांसाहार स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं ये अब उन्हें समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर कृपा है। अ पर्सन हु इज अ वेजिटेरियन नॉट नेसेसरली दैट ही इज मर्सीफुल ऑल्सो, बट अ पर्सन हु इज मर्सीफुल हैज टू बी अ वेजिटेरियन। तो इसलिए वैदिक शास्त्र जो हैं, जैसे कि यहां पे भगवान दो बार बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य, भक्ति योग के ऊपर जोर दे रहे, पॉजिटिव, कि तुम पॉजिटिव फॉलो करो, अपने आप जो नेगेटिव है वो दूर हो जाएगा तुम्हारा। तो जैसे कि कोई तपस्या, कोई अपने जीवन में तप, और कौन सा तप बताया गया है, दिव्य तप, जब दिव्य तप का पालन करता है, तो यहां उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये नहीं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, मैं यदि नशापान नहीं करूं तो मेरा लिवर, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, मैं मांसाहार नहीं करूं तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, मैं जुआ नहीं खेलूं तो मेरे पैसे बचे रहने चाहिए, मैं परस्त्री पुरुष गमन न करूं, क्यों, क्योंकि फिर मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, या कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए, HIV एड्स ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, यहां पे शास्त्र क्या बताते हैं कि ये सारे जो भक्ति के कर्म हैं ये हम कर रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हां, इसमें यदि हमारा स्वास्थ्य, हमारी आर्थिक स्थिति, जो भी कुछ मांसाहार इत्यादि के वजह से ठीक होती नहीं भी हो, फिर भी पालन करेगा कोई, कौन, जो भक्ति कर्म में लगा है, फिर भी वो कृपा, तपस्या, सत्यता, स्वच्छता का पालन करेगा, नॉट बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग हिम ऑन अ फिजिकल लेवल। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, वी आर नीदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए निर्धारित किया है, वो हमारा उद्देश्य कृष्ण है, बस और कुछ नहीं। वी आर नॉट अटैच टू वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, वी आर अटैच टू कृष्ण। तो ये एक बहुत सटल पॉइंट है भक्ति का, जो कि सकाम कर्म को तुच्छ बना देता है फिर, क्योंकि सकाम कर्म में मेंटेलिटी क्या होती है कि हां मैं ये सब का पालन करूंगा, क्या मिलेगा इसमें, मिलेगा क्या इसके अंदर, वो मेंटेलिटी होती है। तो बाहर के कर्म एक जैसे दिख रहे होंगे, एक भक्ति योगी के भी और एक सकाम कर्मी के भी, लेकिन खाली वो जो मेंटेलिटी का अंतर के वजह से वो भक्ति योगी जो है वो उसके ऊपर उड़ जाता है। हरे कृष्ण। आपको लगा वो गर्मी का मौसम है, गलती से आई कि स्लाइड यहां, दूरेण यवरम कर्म। भगवान इसके बाद अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम भक्ति के सहारे गर्हित कर्म से दूर रहो। तो ये एग्जाम्पल एक तैराक का हम देना चाहेंगे, स्विमर। तो जब कोई स्विमिंग करता है तो जो स्विमिंग जानता है वो आगे जाता है ना, हाथ पैर हिलाता है, जब शुरुआत में कोई स्विमिंग सीखने जाता है तो बहुत सा हाथ पैर हिलाता है और उसको लगता है कि मैं बस पूरा एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गया। जब ऊपर देखता है तो जहां था वहीं पे होता है ना, इतना हाथ पैर चला है लेकिन आगे ही नहीं गया, सारा स्विमिंग पूल का पानी बाहर चला गया लेकिन वो उधर का उधर ही है। तो स्विमिंग में या तैरने में बताया गया है, जैसे कि यहां पर भी आप देख रहे हो कि पानी को पीछे फेंका जाता है, तो पानी को पीछे फेंकने के वजह से वो आगे जाता है। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, पानी को पीछे फेंकने के वजह से वो आगे जा रहा है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने कम से कम इतनी चेष्टा अपने हृदय में कर ली कि मुझे गर्हित कर्म को पीछे फेंकना है अपने जीवन में, जस्ट अ लिटिल डिजायर टू पुश बैक सिंफुल लाइफ, भगवान अपने आप उसे अपनी ओर प्रगति की ओर ले आते हैं, जैसे कि स्विमिंग। ये नहीं कि सारा पानी पीछे फेंकने के बाद फिर अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई आगे आने की, साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यदि कोई गर्हित कर्म मेरे जीवन में हो रहा है तो मैं जब तक उसे पूरा नहीं छोड़ूंगा और जब तक पूरे भक्ति के क्रम को नहीं अपनाऊंगा तब तक प्रगति नहीं होगी। नहीं, यदि इच्छा भी की तो भगवान अंदर से जो चैत्य गुरु हैं वो मदद करते हैं। जैसे बहुत बार हम देखते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में जब नए आते हैं कोई, तो वो जब सुनते हैं कि चार नियम का पालन करना है, ये सब कुछ छोड़ना है, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये हो पाएगा कि नहीं, छोड़ पाएंगे कि नहीं, और डर जाते हैं, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि थोड़ी सी भी इच्छा उनके अंदर होती है उस कर्म को छोड़ने की, तो अपने आप एक दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है, एक दिव्य शक्ति। एक मैं जब बंबई में प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति, वो उन्होंने एक मतलब इस्कॉन में पहले दिन आए, हो फर्स्ट टाइम एंटरिंग इस्कॉन टेम्पल, और प्रवचन चल रहा था और प्रवचन में कुछ मुद्दे थे कर्म के ऊपर, कर्म के नियम और इत्यादि। तो ये व्यक्ति बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में रहने वाला, पैसे वाला, घर परिवार इसका और कहीं बैंगलोर में रहता, ये अकेला रहता था। तो रोज ये सी फूड खाने जाता था किसी होटल में, सब समुद्र के जीव जंतु जो होते हैं उसको कहते हैं सी फूड। तो रोज वो, उसको इतना अच्छा लगता वो सी फूड खाना, रोज वो सी फूड खाने जाता। बस एक प्रवचन में दो तीन पॉइंट, वो भी कितना टाइम लगा होगा वो दो तीन पॉइंट को सुनाने के लिए वो प्रवक्ता को, कुछ 5 मिनट या 7-10 मिनट। ये व्यक्ति वो प्रवचन सुबह का भागवतम सुनने के बाद अपनी गाड़ी लेकर उसी रेस्टोरेंट में जा रहा है सी फूड खाने के लिए। ये मुझे बता रहे थे बाद में कि क्या हुआ पता नहीं, ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए। बोले कि पता नहीं शायद मैंने ड्राइविंग भूल गया, क्या हुआ, यू टर्न लेके मैं वापस आ गया और मंदिर में खिचड़ी खाया गया। उन्हें पता नहीं कि वो संडे भागवतम के बाद खिचड़ी दी जाती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैं लेक्चर सुन रहा था और लेक्चर में जब मैंने वो कर्म का पॉइंट सुना तो मेरे मन में थोड़ी सी इच्छा हुई, मुझे भी पालन करके देखना चाहिए। बस दैट वॉज इट, इट वॉज टू लेट नाउ। उसने इच्छा प्रकट कर ली एक, और ये बोल रहे हैं कि कैसे वो यू टर्न लिए और ऐसा सी फूड जो वो इतने सालों से रोज खाते थे, एक दिन प्रवचन का 5 मिनट श्रवण और इतने सालों की उनकी आदत खत्म। यहां तक कि प्याज लहसुन भी छोड़ा उन्होंने। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि उसे दूर रखने की चेष्टा, इच्छा भी यदि कोई करता है तो चैत्य गुरु उसके अंदर उसे शरणागति देते हैं। ये एक और उदाहरण है उसी से संबंधित, पहचान गए होंगे आप कि नाव को आगे जाने के लिए पानी को पीछे फेंकना पड़ता है। तो इसलिए आप यदि तैरने भी जाएं या नाव में भी बैठें, जब देखें तो ध्यान में क्या आना चाहिए, आज का श्लोक 2.49, दूरेण यावरम कर्म, कि थोड़ी सी इच्छा भी यदि हम करें गर्हित कर्मों से अपने आप को छुटकारा दिलाने की, तो तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। अब जब भगवान ने बुद्धि योगा धनंजय भी कहा कि भक्ति के द्वारा हे धनंजय तुम ये गर्हित कर्मों को दूर रखो, तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि भक्ति की शक्ति ऐसी है कि यदि तुम भक्ति मार्ग में लगोगे तो ये जो गर्हित कर्म है ये तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। ये एक और अर्थ है इसका, दूरेण यावरम कर्म का एक और अर्थ है कि तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम भक्ति के कार्यों में लग जाओगे तो अपने आप ये जो गर्हित कर्म है ये रहेंगे लेकिन तुम्हारे पर प्रभाव नहीं करेंगे। और इसके लिए उदाहरण हम देखेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये इतना शक्तिशाली प्रकृति ने दिया है हम सब मनुष्यों को कि जिसका इम्यून सिस्टम 100% फुल प्रूफ रहता है तो कोई भी बीमारी आए वो बीमारी आएगी बैक्टीरिया वायरस, लेकिन कुछ नहीं कर सकता उसे। इसलिए आप देखो जो आयुर्वेद नेचुरोपैथी के अनुसार वो जो आपका इम्यून सिस्टम, यहां तक कि एलोपैथी में भी जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर हर समय वो जोर रहता है। फोकस किस पे रहता है? इसका इम्यून सिस्टम बढ़ा दें। तो अब यदि हम एक उदाहरण लें कि ये जो डिजीज है कौन सा, एड्स, तो ये एड्स करता क्या है? अब देखिए, ये मैं ढूंढ रहा था आज, ये एक्चुअल इमेज है एचआईवी वायरस का। यदि ऊपर लिखते नहीं तो आपको लगता कि पता नहीं कोई फुटबॉल पे किसने थर्मोकोल लगा दिया है, क्या हुआ है। तो ये एचआईवी वायरस का इमेज है, और इसके विपरीत जो इसको प्रतिकार करने का हमारा इम्यून सेल है उसका ये इमेज है। और ये इमेज आप देखो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एचआईवी है कौन सा इम्यून सेल है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। क्या एक जैसे दिखते हैं? एचआईवी वायरस और इम्यून सेल, क्योंकि ये एचआईवी वायरस इतना डेंजरस है। ये बताया गया है कि जैसे द्वापर युग में कंस अलग अलग राक्षसों को भेजा करता था, और ये अलग अलग राक्षस कोई भी रूप ले सकते थे, तो ये एचआईवी वायरस ऐसे राक्षस के समान है कि ये रूप ले लेता है। कोई अगर उसके प्रतिकार कोई औषधि छोड़ता है सिस्टम में किसी मनुष्य के जिसको एचआईवी हुआ है, तो ये एचआईवी का जो वायरस है वो अपना भेद बदल लेता है, तो वो जो मेडिसिन है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अंदर तो आया हूं इसको अटैक करने के लिए, लेकिन अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि रामायण में वर्णन है कि वो खर और दूषण कितने, उनकी कितनी सेना थी, 14,000। तो 14,000 उनकी सेना थी, और यहां पर राम अकेले, लक्ष्मण को भी नहीं लिए, राम अकेले, तो उन्होंने कुछ ही मिनटों में पूरी 14,000 सैनिकों को खत्म कैसे किया कि वो सारे सैनिक, उनको जब बताया गया, खर और दूषण ने कहा, फोटो दिया, ये है राम, इसको मारने का है। होते ना कई जो सीरियल किलर होते हैं, उनको फोटो दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, फोटो दिया जाता है, ये फोटो है, ये नाम है, ये एड्रेस है, खत्म कर देना। तो वैसे ही खर और दूषण ने रामचंद्र जी का पूरा चरित्र बता दिया कि ये ऐसे है, इसको मारना है। तो हुआ क्या, रामचंद्र जी अब 14,000 सैनिक बन गए उनके, तो सारे एक दूसरे को मार के खत्म कर दिए कि अब सब राम ही दिख रहे हैं उनको, उनकी सेना। अरे ये इधर बगल उधर था, इधर बगल में आ गए, मारो इसको खत्म कर। पता लगा कि अरे तो मेरा ही सैनिक था, तो वैसे एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो सोचिए कि यदि आप किसी पे प्रहार करने जा रहे हो और वो आप ही का रूप ले ले, तो ये HIV वायरस। आप लोगों को लग रहा होगा ये अचानक भगवत गीता से, हम मेडिकल कॉलेज में बैठे से लग रहा है। ये हम इसलिए एग्जाम्पल लिए हैं कि कलयुग के जो गर्हित कर्म है ना, उनको आजकल लोगों ने उस प्रकार का रूप दे दिया है कि उस गर्हित कर्म को टर्मिनोलॉजी जैसे दे देते हैं, और उस मीडिया उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि कोई गर्हित नहीं है, आप बेकार फालतू सोच रहे हो कि ये पाप है और ये है वो है। जैसे कि वो टर्म्स जो यूज करते हैं आजकल, वैश्याओं को कहते हैं सेक्स वर्कर्स, मतलब कोई सोशल वर्क कर रहे हैं जैसे वो लोग, सेक्स वर्कर्स। और कोई यदि मीट प्रोडक्ट है तो मीट प्रोडक्ट को वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि इसके अंदर कटा हुआ मांस है, उसके अंदर यही लिखते हैं प्रोसेस्ड मीट बोलते हैं उसको, स्लॉटर्ड मीट नहीं बोलते, प्रोसेस्ड मीट बोलेंगे उसको। जैसे कि मैं एक ये प्रोटीनेक्स करके कोई न्यूट्रिएंट ड्रिंक है, तो उसमें किस प्रकार से वो लोग लिखते हैं कि हैं उसके अंदर बहुत से आर्टिफिशियल एलिमेंट्स केमिकल्स, लेकिन लिखते हैं नेचुरल लुक लाइक आर्टिफिशियल मैनमेड। तो उन्होंने ये ऐसा क्यों लिखा है, ये उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि नेचुरल कहीं पे पढ़ लिया तो ले तो खरीद लो यार, कौन पूरा पढ़ता है। हाँ, नेचर आइडेंटिकल ऐसे लिखते हो, नेचर आइडेंटिकल आर्टिफिशियली मैनमेड, वो फिर थोड़े छोटे फॉन्ट में लिखते नीचे आर्टिफिशियली मैनमेड। तो ये जो HIV वायरस, ये भी उसी प्रकार से है कि शरीर में पता नहीं लगता कि वो जो इम्यून सेल है और वो जो HIV का वायरस है, वो दोनों दिखने में कोई उसमें डिफरेंशिएशन है कि नहीं। हालांकि वो खत्म उसी को करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड, कि हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता। और इसलिए इसे इतना जानलेवा घातक बताया गया है कि जो हमारे सारे रोग को प्रतिकार करने की शक्ति है, उसी को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। जैसे कि हमारे डिफेंस में, एयरफोर्स में हमको ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब भी कोई शत्रु पक्ष अटैक करता है तो वो सबसे पहले जो उस कंट्री का एयरफोर्स बेस है, रनवेज है, उसको खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि रनवे को खत्म कर देगा तो फिर एयरक्राफ्ट एम्यूनिशन बॉर्डर तक ला ही नहीं सकता, कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं लेगा। तो पहले रनवेज को खत्म कर दो तो एम्यूनिशन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और फिर धीरे धीरे जो इन्फेंट्री आर्मी है उसको खत्म करते 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 आप अंदर आ सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एम्यूनिशन रहेंगे, यहां से एम्यूनिशन पहुंच नहीं पाए। तो ये सब जो गर्हित कर्म ये HIV वायरस करते क्या, यही करते हैं कि वो जड़ में जाते हैं। इसलिए भक्ति योग भी क्या है, भगवान जड़ में जा रहे हैं, प्रॉब्लम इस भौतिक संसार में रहने का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, भगवत विस्मृति। तो वैसे ही अनर्थ गर्हित कर्म भी करते क्या है, एचआईवी वायरस की तरह वो इम्यून सिस्टम को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप चाकू से या ब्लेड से थोड़ा कट भी गया तो बस वो जानलेवा आपका हो जाता है एड्स पेशेंट का। तो इसलिए जब यहां पर भगवान बोल रहे हैं दूरेण यहां वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय की, हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग या भक्ति योग के सहारे उसको पकड़ के रखो और अपने आप ये सारे जो गर्हित कर्म हैं वो डर के मारे चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर। तो इसलिए बुद्धि योग से गर्हित कर्मों को दूर रखो। तो यदि हम रोग प्रतिकारक शक्ति को कहें कि वो भक्ति की शक्ति है तो गर्हित कर्म यहां पर हुए ये वायरस। तो जिसका इम्यून सिस्टम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा चेतो दर्पण मार्जनम, और श्रील प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य देश में गए और ये हिप्पी जो इतने नशे में धुत हुआ करते थे ड्रग्स और ये सब में लत, तो श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम दिया और हरिनाम से हुआ क्या कि उनका हृदय शुद्ध होने लगा, और जब हृदय शुद्ध हुआ तो अपने आप वो गर्हित कर्म छूट गए उनके। इसलिए श्रील प्रभुपाद का फॉर्मूला क्या था, जो चैतन्य महाप्रभु का फॉर्मूला था, उनका फॉर्मूला ये था, यू प्रैक्टिस द पॉजिटिव द नेगेटिव विल लीव यू, यू डोंट हैव टू लीव द नेगेटिव। तो ये उनका फॉर्मूला था। अब आगे भगवान ने फिर धनंजय अर्जुन को पुकारा, लेकिन उसके साथ साथ अंतिम लाइन में क्या बोला है, कृपणा, कि हे धनंजय, तुम्हारा नाम धनंजय अर्थात जिसने धन को जीता है, जो धनवान है, तो धनवान को कृपण नहीं बनना चाहिए। तो फिर तुम्हारे अंदर वो जो तुम्हारा नाम है उसका विरोधाभास देखा जाएगा। तो अब हम यदि कृपण शब्द को लें तो भगवान यहां पर अर्जुन को धनंजय पुकार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कृपण फल हेतव, कि जो केवल कर्म इसलिए कर रहे हैं कि मुझे क्या फल मिले इस कर्म के द्वारा, वो कृपण है, भगवान बोल रहे हैं। तो हे धनंजय तुम उस प्रकार के कृपण मत बनो। तो छह अर्थ हमारे शास्त्र बताते हैं कृपण शब्द के। सबसे पहला अर्थ बता रहे हैं निर्धन। अच्छा कृपण समझे आप, कृपण का अर्थ क्या होता है, हाँ माइजर या कंजूस। तो यहां पर वो भी एक अर्थ है, लेकिन यहां पर सबसे पहला अर्थ बताया गया है निर्धन। अब निर्धन किसको कहेंगे आप, जिसके पास धन नहीं है। यहां पर कृपण को निर्धन इसलिए कहा गया है कि जिसका जीवन एक निर्धन के समान है, धन है लेकिन उसका लाइफस्टाइल एक निर्धन के समान है। तो जैसे कोई यदि धनवान व्यक्ति है तो उसके लाइफस्टाइल से समझ में आएगा ना कि वो धनवान है, कौन सी गाड़ी, कौन से एरिया में रहता है, क्या उसके चॉइसेस या आदतें हैं, कौन से उसके फ्रेंड्स हैं। तो यहां पर कोई व्यक्ति का जीवन यदि ऐसा है कि उसके रहन सहन से वो भक्ति के कर्मों को नहीं दर्शा रहा, तो यहां भगवान कह रहे हैं कि उसके रहन सहन से समझ में आ जाएगा कि वो निर्धन है या कृपण है, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल दिया गया है। ऐसा नहीं कि उसके पास धन नहीं है, धन है लेकिन उसका लाइफस्टाइल के वजह से वो दूसरों को बता रहा है कि वो गरीब है। जैसे कई बार कोई ट्रेन में बहुत धन लेके जाता है, हाँ कोई कारणवश लेके जाना पड़े 1 लाख 2 लाख कैश। तो कई होते हैं मारवाड़ी कैसे लेके जाते पता है, एकदम फटी पुरानी थैली में डालेंगे उसको। तो चोर भी सोचेगा यार मैं भी एक थैली दे देता हूं इसको, कोई थैली नहीं इसके पास अच्छी, तो फटी पुरानी थैली में डाल के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि क्या चोरी करेगा, थैली देख मेरी कैसी है, मेरी औकात क्या होगी, लेकिन है अंदर बहुत कुछ। तो वैसे ही अंदर है पोटेंशियल भक्ति में लगने का, लेकिन रहन सहन उसका निर्धन के समान। फिर अभागा, एक और अर्थ कृपण का है, अनफॉर्चुनेट जिसे कहते हैं, या दुर्भाग्यशाली जीव। तो ये है वो सकाम कर्मी जो इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। वो हिरण्यकशिपु के विषय में नारद मुनि ये सोच रहे थे कि ये हिरण्यकशिपु, इसके अंदर इतनी क्षमता तपस्या करने की, यदि ये केवल भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का भक्त होता तो कहां का कहां पहुंच जाता है। हनुमान जी ने जब रावण की लंका देखी तो हनुमान जी के मन में भी यही बात आई, कितना दुर्भाग्यशाली है रावण, इतनी सुंदर इसकी सोने की लंका है, सब कुछ इसके पास है, खाली एक चीज की कमी है, ये राम भक्त नहीं है। तो जो सकाम कर्मी के विषय में बताया गया है कि वो कृपण कैसे हैं, क्योंकि लगे हुए हैं वेदों को पालन कर रहे हैं, इतने पास हैं वैदिक जीवन शैली के, लेकिन जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो दिमाग में बात नहीं बैठ रही। और भारत में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, ये कैटेगरी भारत में ज्यादा है कि भगवान श्री कृष्ण के इतने निकट, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दूर कर देते हैं उनके दुर्भाग्य की वजह से। फिर ये एक विशेष अर्थ बताया गया है, सत्यासत्य विवेक शून्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सत्य और असत्य की विवेक बुद्धि न रखता हो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये ऐसे जीव हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला है लेकिन गधे के समान परिश्रम कर रहे हैं, ये भी पता नहीं कि असत्य, कम से कम जो सकाम कर्म में लगे हैं वो शुद्ध कृष्ण भक्ति में न लगे हो, लेकिन कम से कम वो गर्हित कर्म में तो नहीं लगे। और ये होते हैं जो कि बिल्कुल विवेक बुद्धि नहीं लगते रखते, और उसके वजह से सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैटेगरी को कहते हैं मूढ़ा, अर्थात ऐस या गधा, जो नहीं जानता। इसलिए गधे के विषय में बताया गया है कि गधा, उसका एक नाम है बैसाख नंदन, एकदम बहुत मधुर नाम लगता है ना बैसाख नंदन। तो गधे को बैसाख नंदन इसलिए कहते हैं कि जब बारिश के मौसम में बहुत घास उगा हुआ रहता है तो गधा सूख के पतला दिखता है, नहीं हो जाता है, घास इतना है बारिश के मौसम में लेकिन वो सूख के कांटा हो रहा है, और गर्मी के मौसम में एकदम फूला हुआ दिखता है, जब यहां घास दिखता ही नहीं कहां उगा हुआ। तो ये कैसे विरोधाभास देखा जाता है, तो गधा बारिश के मौसम में, मान लो जैसे हमारा लॉन है तो बारिश के मौसम में पूरा घास से भरा हुआ ये लॉन, गधे को एक कोने में छोड़ दो तो उसको एक कोने से दूसरे कोने घास को खत्म करते करते बहुत टाइम लगेगा क्योंकि घास बहुत है। तो वो थोड़ा घास खाता है, थोड़ा आगे जाता है, बहुत खा लिया लेकिन मन में क्या, पीछे मुड़ के देखता, अरे मैं तो इतना ही चला हूं खाली, तो उस चिंता के वजह से वो पतला ही रहता है कि कि कुछ ज्यादा मिला ही नहीं खाने को, क्योंकि वो नीचे पीछे देखता है कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक पहुंचा है वो। और गर्मी के मौसम में उल्टा होता है, थोड़ा सा घास इधर है, फिर आधे किलोमीटर बाद थोड़ा सा घास है, तो वो इतना सा घास खाता है, फिर आधे किलोमीटर चल के जाता है, उसको लगा कितना मैं खा लिया, तो उसके वजह से फिर एकदम मोटा ताजा दिखता है वो। इसलिए उसको कहते हैं गधा। तो ये है वैशाख नंदन। तो ये कैटेगरी है सत्य सत्य विवेक शून्य। अब चौथी कैटेगरी दुष्ट, ये वो हैं कि जिनको पता है ये मनुष्य देह क्यों मिला है, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी उसका सदुपयोग नहीं करते। जैसे कि सूरदास, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत से पद उन्होंने लिखे हैं सूरदास जी ने, तो सूरदास जी अपने एक पद में लिखते हैं, जिंतन ये जो तन मुझे जिन्होंने दिया, जिन तन मैं उन्हें बिसरायो, जिन्होंने मुझे ये तन दिया उनको याद करने के लिए मैं उन्हीं को भूला, ये तन को लेकर। और वो आगे लिखते हैं, और फिर मैं भयो हरामी, वो नम्रता से बोल रहे हैं, बोलते हैं नमक हराम, क्या है जिसका नमक खाया उसको ही चाकू घोंस दिया। तो वो बोलते हैं कि जो भगवान ने मुझे मनुष्य तन दिया, ये मनुष्य तन में आने के बाद मैंने इसी तन का इस्तेमाल उनको भुलाने में लगाया, तो मुझसे बड़ा हरामी कौन हो सकता है। ऐसे वो एक बद्ध जीव की स्थिति बता रहे हैं, उसे कहते हैं इस भाषा में दुष्ट, कि जो जानते बूझते हुए भगवान को भुलाता है, और जो उसे भगवान ने शक्ति दी है जिसके द्वारा वो अपने आप को बाहर निकाल के भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहता, ये है दुर्योधन। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, साक्षात भगवान वहां पर अवतरित हैं उस युग में, दुर्योधन के सामने दुर्योधन को बोल रहे हैं कि दुर्योधन तुम केवल 5 गांव दे दो, और भगवान ने अपना विश्वरूप सबसे पहले दुर्योधन को दिखाया, अर्जुन से पहले, और दुर्योधन जानता भी था। दुर्योधन कहता है कि देखो मैं जानता हूं कि आप भगवान हो, लेकिन मैं नहीं शरणागत होऊंगा फिर भी आप, मैं जानता हूं कि पांडव जो हैं वो धार्मिक हैं, लेकिन मैं धार्मिक नहीं बनूंगा। इसे कहते हैं दुष्ट, जो जानते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर वो गलत ही करता है। जैसे हम वो विनोद में कथा कहते हैं ना, एक शराबी पेपर पढ़ रहा था, पेपर पढ़ने के बाद सब उसमें आर्टिकल आया था कि शराब क्या करता है आपके शरीर को, ये लिवर को क्या करता है, बोलता है कि आज से मैंने बंद कर दिया पेपर पढ़ना, क्योंकि पेपर में आया ना कि शराब आपको कैसे मार रहा है, तो आज से मैंने बंद किया पेपर पढ़ना। तो जानता है पढ़ लिया कि वो शराब क्या कर रहा, लेकिन फिर नहीं छोड़ेगा वो, इसे कहते हैं दुष्ट। तो कृपण का एक और अर्थ है कि जानते हुए वो अपने भक्ति के धन को इस्तेमाल नहीं करना, और कंजूस। तो कंजूस, खैर इसके विषय में तो हम सब जानते हैं कि कंजूस वो व्यक्ति है जिसके पास धन है लेकिन उसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये नहीं, दुष्ट कौन है, वो धन को गलत चीजों में लगाता है, कंजूस किसी में नहीं लगाता, वो किसी को देगा भी नहीं और खुद भी मरमर के जिएगा, और वो ऐसे ही सड़ाएगा उस धन को, उसको बोलते हैं कंजूस, और अंतिम अर्थ लालची, कि इसके पास कुछ है लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं है, उसे और चाहिए। इसका एक और अर्थ ये है कि प्रकृति की जो लात खाता है लेकिन और खानी है उसको। एक घटना हुई थी हाल ही में, एक व्यक्ति पाश्चात्य देश में, डॉक्टर ने डायग्नोज किया कैंसर है और एडवांस स्टेज का कैंसर, और उसे बोल दिया कि भाई आपके केवल 6 महीने बाकी हैं। तो ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति, तो जब पता लगा कि 6 महीना मेरा केवल बाकी है तो जितना धन था सारा उसने लुटाना शुरू किया अपने ऊपर, सब ऐशो आराम जो भी वो सोच रखा था कि आगे 10 साल बाद जाके खरीदूंगा, सब खरीद लिया, जहां जाना था कर लिया, ये कर लिया। 6 महीने बाद डॉक्टर बोलते हैं सॉरी वो आपका रिपोर्ट नहीं था। तो जैसे डॉक्टर ने बोला वो आपका रिपोर्ट नहीं था, वो तुरंत हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि जितना पैसा उसने उतने सालों में कमाया था 6 महीने में उड़ा दिया उसने सारा, ये सोचते हुए कि अब क्या फायदा ये पैसे रखने का, तो उड़ा देते। तो ये श्रेणी है, 6 श्रेणियां जो कृपण व्यक्ति होते हैं। और भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा नाम धनंजय है, कि जो सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है उसको तुमने जीत लिया, और वो कौन है, वो स्वयं, उनको तुमने सारथी बना लिया है। तो ये महाराज नृग, नहुष, हिरण्यकशिपु, इनका उदाहरण जो हमने लिया, इसके विपरीत सुदामा की बुद्धि योग की उदारता क्या है, कि सुदामा विप्र वो अपना सब कुछ जो अंतिम कुछ अर्पण करना था वो भी भीख मांग के लेकर भगवान को उन्होंने वो दे दिया या भगवान ने छीन लिया। तो हम सब सुदामा विप्र की कथा जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर वो हमें एक पूरी कथा में केवल एक जो सीन है उसके ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, और वो है जब सुदामा द्वारका से वापस जा रहे थे। तो देखो यदि हम उनकी स्थिति में होते, तो चक्रवर्ती बात पूछते हैं, हम उनकी स्थिति में होते कि हमको भेजा गया था भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, मांगा तो नहीं, जो लाया था वो भी उन्होंने छीन के ले लिया और कुछ दिया भी नहीं, तो सोचो हम, हमारे जो वापसी का सफर होगा उसमें हम क्या सोचेंगे। अपने आप को डालो सुदामा इनके जूतों में, क्या जूते भी नहीं थे उनके, तो क्या हमारी विचारधारा होगी। लेकिन सुदामा इनकी विचारधारा क्या थी, इनकी एक ही विचारधारा थी कि अरे कितने सालों बाद दर्शन हुआ मुझे, और ये सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसी कृपा है भगवान कृष्ण की कि उन्होंने अपना साक्षात दर्शन मुझे दिया। और फिर उनकी विचारधारा ये थी, उन्होंने सोचा कि भगवान जो मैं लाया था वो भगवान आनंद से खा रहे थे, तो हाँ चलो मैंने भगवान को जाकर आनंद तो दिया। और फिर तीसरी विचारधारा उनकी ये थी, वो ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने कुछ मांगा नहीं, पता नहीं मैं इतना शर्मा रहा था कुछ मांगने के लिए, कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे ऐसे मित्र से मैं कुछ मांगता। तो क्योंकि उनकी ऐसी विचारधारा थी इसलिए भगवान ने वहां पर तुरंत कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया महल का। और भगवान के कंस्ट्रक्शन कंपनी को कितना टाइम लगता है, क्षणों में वो सब बन गया, वृंदावन कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि उनकी ऐसी उदारता थी, किनकी, सुदामा की ऐसी उदारता थी, इसलिए भगवान ने उन्हें सुख भी दिया और सुरक्षा भी दी। उसे क्या कहते हैं, योगक्षेमम, सुख और सुरक्षा दोनों भगवान ने सुदामा को दी। क्यों? क्योंकि सुदामा का ऐसा उदार हृदय था, ऐसी उदार विचारधारा सुदामा की थी, इसलिए। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हारे रथ पर हूं, तुम केवल मेरे शरण आओ, बुद्धो शरणम अन्विच्छ, तुम अपनी बुद्धि योग से मेरे शरण में आ जाओ, तुम ये हार जीत के परे तुम्हें मैं ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे रथ को हाँक रहा हूं, इस रथ को मैं तुम्हें हार जीत के परे ले जाऊंगा। ये हस्तिनापुर क्या है, मैं तुम्हें हस्तिनापुर राज्य दिलाने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे इस रथ पे, मैं तुम्हें इससे भी परे मैं अपना धाम स्वधाम तुम्हें अर्पित करूंगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम धनंजय है और उसको सिद्ध करो और कृपण बिल्कुल मत बनो। तो ये आज के श्लोक की शिक्षा भगवान अर्जुन को दी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।